15 फरवरी ओके सो आज बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 तक हम लोग बात कर चुके हैं, जहां हमने आपको बताया कि ई कॉमर्स में कैसे कैसे और क्या काम होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन तक हम लोगों ने पिछली बार बात की थी 9 फरवरी को। आज 15 फरवरी को हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो बताता है कि ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है उसको कैसे बनाया जाएगा। बिल्डिंग एन ई कॉमर्स प्रेजेंस वेबसाइट मोबाइल साइट्स एंड ऐप्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक एक करके आगे बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप जो भी ई कॉमर्स में करने जा रहे हैं उसकी कल्पना कीजिए, अपनी ई कॉमर्स उपस्थिति की कल्पना कीजिए, ठीक है। लिख लो, ई कॉमर्स उपस्थिति की कल्पना कीजिए। पहला पॉइंट हो गया ई कॉमर्स उपस्थिति की कल्पना कीजिए, ठीक है। जिसमें पहली बात है कि विचार क्या है, आइडिया क्या है, आइडिया क्या है, विचार क्या है, ठीक है। करना क्या चाहते हैं, जो भी चाहे आप लिख लें, क्या करना चाहते हैं, या विचार क्या है, या आइडिया क्या है, तीनों में से जो चाहे लिख लें, ठीक है। अब इसको आपको समझा रहे हैं, अब जितना आपको मन आए उतना लिख लीजिएगा, इसको समझा रहे हैं। समझा क्या रहे हैं कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई लक्ष्य होना चाहिए, क्यों करना चाहते हैं, आखिर बात क्या है, ठीक है। व्यवसाय करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तो आमतौर से आपको लगता है कि साहब मुनाफे के लिए करना चाहते हैं, तो ये बात सही नहीं है, ठीक है। किसी भी व्यवसाय के बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, और जो बचपन से शायद आपने पढ़ा भी हो वो है सेवा के साथ मुनाफा, खाली मुनाफा नहीं बल्कि क्या पढ़ा है, सर्विस विद प्रॉफिट, सेवा के साथ मुनाफा, ठीक है। खाली मुनाफा नहीं होता है, खाली मुनाफा अगर सोचिएगा तो कभी भी व्यवसाय चल नहीं पाएगा, आप बहुत गड़बड़ कर दीजिएगा, खाली मुनाफे से व्यवसाय नहीं चलता है। तो आप क्या करना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो वो है ग्राहक वर्ग वो कौन सा है, कौन सा ग्राहक वर्ग है, किसके लिए करना चाहते हैं। आपके मन में आएगा हम ये करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसके लिए करना चाहते हैं, ठीक। जैसे हमारे बेटे ने दवाई की दुकान खोली तो उसके मन में था कि साहब दवाई जो है वो घर बैठे बैठे लोगों को मिले और जेन्युइन दवाई मिले, पर्चा सहित मिले, ये उसके मन में एक लक्ष्य था, बातचीत थी, ठीक है। किसके लिए करना चाहते हैं, तो उसके मैंने पूछा भाई किसके लिए करना चाहते हो बेटा, तो उसने बताया कि साहब जो पेंशनर हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जो दवाई खरीदने नहीं जा पाते हैं और जिनको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए करना चाहते हैं, जो दवाई खरीदने नहीं जा पाते हैं उनके लिए करना चाहते हैं, ताकि उनको सही दवा मिल जाए, पक्का पर्चा मिल जाए और घर बैठे दवाई मिल जाए, बात समझ रहे। तीसरी बात हमारे सामने आती है कि इंटेंडेड मार्केट स्पेस, माने आपका बाजार कौन सा होगा, बाजार कौन सा होगा, कहाँ करेंगे, इलाहाबाद में करेंगे, मोवाइमा में करेंगे, फापामो में करेंगे, नैनी में करेंगे, झूसी में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, हिंदुस्तान में करेंगे कि पूरी दुनिया में करेंगे, कहाँ करेंगे, ठीक है। आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं और मान लीजिए आपका बिजनेस घर पे खाना पहुँचाने का है, ठीक है, होम डिलीवरी फूड्स, जैसे वो क्या एक है ना जो यहाँ हाईकोर्ट के पास है रेस्टोरेंट, ड्यूसिस है, ठीक है। तो वो घर बैठे आपको ऑर्डर कीजिए, वो घर पे खाना पहुँचाता है। तो अब अगर आप घर पे खाना पहुँचाना चाहते हैं तो आपको तय करना पड़ेगा कि घर पे खाना कहाँ तक जाएगा, फापा मोह तक जाएगा, झूसी तक जाएगा, नैनी तक जाएगा, सुलेम सराय तक जाएगा कि हनुमानगंज तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्र तय करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको रणनीतिक विश्लेषण करना पड़ेगा, रणनीतिक विश्लेषण यानी स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ेगी, रणनीतिक विश्लेषण या स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ेगी कि जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। ये तो आप पढ़ चुके हैं स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि बाजार इंटरनेट पर हम कैसे जाएंगे, इंटरनेट बाजार मैट्रिक्स लिख लीजिए, इंटरनेट बाजार मैट्रिक्स, इंटरनेट बाजार मैट्रिक्स का मतलब यह हुआ कि आप कैसे कैसे इंटरनेट पर जाएंगे, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, बहुत सारे चरण उसके हो सकते हैं, तो इसके लिए इंटरनेट बाजार मैट्रिक्स बनानी होगी। फिर इसके बाद आपको अगला काम ये करना पड़ेगा कि आपके पास समय क्या है, मतलब किस किस समय में आप क्या करेंगे, टाइमलाइन क्या है, और कितना पैसा है, बजट कितना है, कितना पैसा आप खर्च करने को तैयार है, ठीक है। तो इतनी बातों से बच्चों पता चलेगा कि आपका आइडिया क्या है और कैसे आप इसको चालू करना चाहते हैं। फिर दूसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि रेवेन्यू मॉडल, मॉडल को आप लोगों ने क्या बताया था, स्वरूप, हाँ, तो राजस्व का स्वरूप क्या है, राजस्व का स्वरूप क्या है, दूसरा पॉइंट हो गया राजस्व का स्वरूप क्या है, यानी आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से क्या करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, जो हम लोगों ने सब चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, ठीक है, क्या रेवेन्यू मॉडल होगा, क्या बिजनेस मॉडल होगा, ये सब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि कौन है और कहाँ है आपका ग्राहक, आपका ग्राहक कौन और कहाँ है, आपका ग्राहक कौन और कहाँ है, ठीक है, जो हमने आपको अभी बात बताई। फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो बाजार है आपका उसकी विशेषताएं क्या हैं, बाजार की विशेषताएं लिख लीजिए, बाजार की विशेषताएं, ठीक है, बाजार की विशेषताएं माने किस तरह के लोग वहां आते हैं, बड़े आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, नौजवान आते हैं, और कितने लोग आते हैं, आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं या नहीं हैं, और कितने प्रतिस्पर्धी हैं वहाँ। अभी जैसे हमारे एक मित्र हैं जो लेंसकार्ट, लेंसकार्ट समझते हैं क्या है, लेंसकार्ट कौन बताएगा, हाथ उठा के बताइएगा, लेंसकार्ट हाथ उठाइए, हाँ, ठीक है, ऑनलाइन चश्मे की दुकान है, ऑनलाइन चश्मे की दुकान है, बैठ जा बेटा, ठीक है, जैसे आपकी चश्मे की दुकान होती है तो वो ऑनलाइन चश्मे की दुकान है, लेंसकार्ट उसका नाम है। तो लेंसकार्ट अपनी दुकानें भी खोल रहा है, तो हमारे एक मित्र लेंसकार्ट की दुकान लेना चाहते थे, दुकान खोलना चाहते थे इलाहाबाद में, हमको लेकर के चलिए चलिए सर ज़रा देखिए, बात करिए उनसे, समझिए क्या ये लोग कह रहे हैं, बिजनेस है, तो हम भी चले गए उनके साथ, देखा तो उन्होंने हमसे देखिए क्या कहा, लेंसकार्ट वालों ने हम लोगों से क्या कहा कि दुकान की जो वो है लोकेशन माने जगह, हाँ, दुकान की जगह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ आपकी दुकान होनी है, ठीक है, तो चश्मे की दुकान कहाँ चलेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो बाजार है वो उसका साइज़ क्या है, ग्रोथ क्या है, चेंजेस क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब हम चश्मे की दुकान वहीं पर लेंसकार्ट की दुकान खोलेंगे जहाँ 2-3-4 चश्मे की दुकानें पहले से हों। हम तो बड़े चौंके, कह रहे जहाँ चश्मे की दुकान पहले से होगी वहीं एक और चश्मे की दुकान खोल लीजिएगा तो बड़ा मुश्किल है, आपको कम्पीट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, जहाँ चश्मे की दुकानें पहले से हैं वहाँ चश्मा बनवाने लोग आते हैं, तो वहाँ आएंगे तो हमारी भी दुकान दिखेगी, तो हमारी दुकान पे भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्योंकि हमारा ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स में हम लोगों को बहुत सारी सामग्री देनी होती है, मटेरियल देना होता है, तो अगला पॉइंट है कि सामग्री कहाँ से आएगी, वेबसाइट की सामग्री कहाँ से आएगी, वेबसाइट की सामग्री का स्रोत, ठीक है। अब ये स्वॉट एनालिसिस में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, किताब आपके पास है, कितने लोगों के पास किताब है, हाथ उठाइए, ओह हमने कॉपी दे भी थी तो भी नहीं हुई, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जैसा आप लोग का मन, ठीक है, हम तो पावर पॉइंट अपलोड कर ही दे रहे हैं, ठीक है, चलिए तो अब देखिए ई कॉमर्स प्रेजेंस कैसे कैसे हो सकती है, ये अब यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। ई कॉमर्स कैसे कैसे हो सकती है, सबसे पहले है वेबसाइट, दूसरा है ईमेल, तीसरा है सोशल मीडिया और चौथा है ऑफलाइन मीडिया। ठीक है, यानी आप कैसे कैसे बनाएंगे, पहले वेबसाइट बनाएंगे, फिर ईमेल भेजेंगे, फिर सोशल मीडिया पे जाएंगे और फिर ऑफलाइन मीडिया से इसका काम प्रचार प्रसार करेंगे। अब जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में जो चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पास, अब हम अगली बात क्या करने जा रहे हैं आप लिख लीजिए, पॉइंट हेडिंग लिख लीजिए, अगला हेडिंग क्या है, वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की पद्धति, ठीक है। अब इसमें नया पॉइंट लिखिए, इसकी सब हेडिंग हो गई, प्रमुख प्रबंधकीय चुनौती, प्रमुख प्रबंधकीय चुनौती, ये पहला पॉइंट हो गया। अब 1.1 हो गया व्यावसायिक उद्देश्यों की स्पष्ट समझ, व्यावसायिक उद्देश्यों की स्पष्ट समझ, और दूसरा पॉइंट हो गया उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सही तकनीक का चुनाव, ठीक है। दो बातें हमने आपको भी बताई कि एक तो आपको जो व्यवसाय का उद्देश्य है वो बहुत स्पष्ट मालूम होना चाहिए, अगर आपको उद्देश्य नहीं मालूम होगा तो फिर आप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। दूसरा, जब आपको उद्देश्य पता हो गया तो फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना टेक्निकल काम है, तकनीकी काम है, उसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर लगेगा, हार्डवेयर लगेगा, डेटाबेस लगेगा, तो कौन सी तकनीक से वेबसाइट बनाई जाए इसका चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तकनीक गलत चुन ली तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा गया, आपकी दुकान चलेगी उलेगी नहीं फिर, क्योंकि अब यहाँ तो सारी दुकान ई कॉमर्स की दुकान टेक्नोलॉजी पर चलनी है, तो सही टेक्नोलॉजी का चुनाव करना ज़रूरी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी वन वन के अंदर लिखा था ना 1.1, 1.2, तो टू नंबर लिखिए, टू नंबर निर्णय के प्रमुख क्षेत्र, निर्णय के प्रमुख क्षेत्र, दो नंबर निर्णय के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, दो नंबर है ये, ये बेटा दो नंबर है, अच्छा प्रभु। अब इसके बाद 2.1 है मानवीय संसाधन तथा सांगठनिक क्षमता, ठीक है। फिर 2.2 है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, टू पॉइंट थ्री है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, और 2.4 है वेबसाइट का डिजाइन, वेबसाइट का डिजाइन, ठीक है। 2.1 क्या है बेटे, ठीक है, मानवीय संसाधन तथा सांगठनिक क्षमता का मतलब यह हुआ कि आपको किस किस तरह के आदमी चाहिए होंगे और वो आदमी क्या क्या करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो ये आपको बाद में दिक्कत करेगा। आपको कैसा आदमी चाहिए, किस किस तरह के आदमी चाहिए जो काम करे तो आपका काम अच्छे से चल पाए। दूसरा पॉइंट क्या है बेटे,
ठीक, अब ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसा हार्डवेयर लेना होगा, कैसा सॉफ्टवेयर लेना होगा, क्योंकि अगर गलत हार्डवेयर आ गया, गलत सॉफ्टवेयर आ गया तो पैसा भी डूब गया और काम भी नहीं बना। तीसरा टेलीकॉम, अब यहाँ देखना पड़ेगा कि किस तरह के टेलीफोन लिंक्स चाहिए, कैसी बैंडविड्थ चाहिए, कहीं बहुत ज़्यादा चाहिए, कहीं कम चाहिए, कहीं 24 घंटे कनेक्टिविटी चाहिए, कहीं थोड़े घंटे के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, और हर चीज़ के पैसे हैं, हर चीज़ में लागत आ जाती है। और चौथा पॉइंट क्या है, वेबसाइट का डिज़ाइन, माने अब किस तरह से उसको दिखने में वो कैसी लगेगी। आप बहुत तरह तरह की वेबसाइट देखते हैं, तो हर वेबसाइट अलग अलग तरह की दिखती है, तो जिस तरह का व्यवसाय होगा उसी तरह की वो वेबसाइट दिखनी चाहिए। तो आप देखिए कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, उसको दिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप देखते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल की बिल्डिंग हो और होटल की बिल्डिंग हो, तो अलग अलग दिखती है कि नहीं। बिल्डिंग देखते ही पता चल जाता है कि अरे ये तो कॉलेज जैसा लग रहा है, अरे ये तो होटल जैसा लग रहा है, अरे ये तो रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है, अरे ये तो अस्पताल जैसा लग रहा है। होटल और अस्पताल लगभग एक ही जैसे होते होंगे, पर देखने में पता चल जाता है कि अरे नहीं, ये अस्पताल है कि ये होटल है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो डिज़ाइन कैसे बनाया जाएगा, वेबसाइट से को देखने से पता चल जाए कि ये किस तरह का वेबसाइट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट है, अभी लिखवाता हूँ, बताता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइन लिखिए, वेबसाइट डिज़ाइन के प्रमुख चरण, ये तीन नंबर हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन के प्रमुख चरण, ठीक है बच्चों। आप बेटा 3.1 हुआ प्रणाली विश्लेषण तथा नियोजन, प्रणाली विश्लेषण तथा नियोजन 3.2 हुआ प्रणाली डिजाइन, 3.3 हुआ प्रणाली का निर्माण, 3.4 हुआ जांच या परीक्षण, जांच ऑब्लिक परीक्षण, और 3.5 हुआ क्या हुआ, क्रियान्वयन, हाँ ठीक, इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, ठीक है। एक एक करके समझते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा, प्रणाली विश्लेषण तथा नियोजन, माने आप देखें कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए, और जो होगा वो कैसे कैसे होगा, ठीक है। आप तरह तरह की वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो जैसे आपने मान लीजिए रेलवे रिजर्वेशन की वेबसाइट पे गए, तो आपको मालूम है कि बाएं हाथ क्या होगा, दाएं हाथ क्या होगा, बीच में क्या आएगा, कहाँ क्लिक करने पे क्या आएगा, तो ये पूरा योजना बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये ऐसे ही योजना है जैसे घर का योजना बनाते हैं ना, कहाँ मुख्य दरवाज़ा होगा, कहाँ मेहमान आके बैठेंगे, कहाँ रसोई होगी, कहाँ टॉयलेट होगा, कहाँ दलान होगा, कहाँ गाड़ी खड़ी होगी, योजना बनानी पड़ती है। उसी तरह से इसकी भी योजना बनानी पड़ती है। नंबर टू पर आपको बताया प्रणाली डिज़ाइन, अब आपने समझ लिया कि हो यहाँ हमको दो कमरा चाहिए, एक ड्राइंग रूम चाहिए, एक पार्किंग चाहिए, गैरेज चाहिए, दो किचन चाहिए, टॉयलेट चाहिए, कुछ कुछ चाहिए, तो अब कहाँ कैसे किसको बनाया जाए, कहाँ रखा जाए, ये हमें फिर दोबारा पॉइंट नंबर टू में देखने की ज़रूरत होती है। थ्री क्या है, 3.3 निर्माण। अब जब ये सोच लिया, समझ लिया कि नक्शा बन गया है, पहले में हमने सोच समझा कि कैसा वेबसाइट चाहिए, दूसरे में जैसा वेबसाइट चाहिए उसका नक्शा बनाया, तीसरा अब इस नक्शे के आधार पर हम निर्माण करना शुरू करेंगे, क्या वेबसाइट बननी शुरू हो जाए, सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो जाए, और चौथे में फिर हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि जैसा सोचा गया था, जैसी आवश्यकताएँ थीं, वैसा ही बना है अथवा नहीं। और जब इतना जांच पड़ताल हो जाएगी, तय हो जाएगा कि भाई जैसा बनाना था वैसा बन गया है, तो पांचवें पे क्या करेंगे,
लागू कर देंगे, क्रियान्वयन कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, चालू हो जाएगा, काम चलने लगेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब ये तो हमने आपको बता दिया, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक पॉइंट और लिखिए, इसको हम कहें पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 अभी बताता हूं। स्वयं बनाना बनाम दूसरों से बनवाना। स्वयं बनाना बनाम दूसरों से बनवाना, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं? ठीक है कि हम अपनी वेबसाइट खुद बनाएं और खुद ही उसको चलाएं, खुद ही उसकी देखभाल करें, एक विकल्प है। दूसरा, हम खुद ना बनाएं, दूसरे को दे दें, वो बनाए और वही उसको चलाए, उसकी मेंटेनेंस भी वही करे। ये दो अलग अलग बातें हैं। अब अगर खुद बनाए तो क्या बात है, आप बताइए, अगर मान लीजिए खुद बनाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या फ़ायदे होंगे, कौन बताएगा? अगर आप ऐसे समझिए ना, वेबसाइट छोड़ दीजिए, उधर दिमाग मत लगाइए, ठीक है। आप ये सोचिए कि आपको अपना मकान बनाना, मकान की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जो मकान में बातें होंगी वो लगभग सब वेबसाइट में भी होंगी, ठीक है, अभी समझ लेते हैं। और तो खुद बनाए तो खुद अगर मान आप मकान बनवाने लगें, अपने से अपने बनाने लगें, तो अपने मजदूर ले आए, मिस्त्री ले आए और खुद बनाएं, तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कौन बताएगा फ़ायदा क्या होगा? लागत कम होगी। बैठ जाओ बेटा, बैठ के बताओ, आराम से बताओ। एक बात हुई लागत कम, दूसरी बात और कोई फायदा? बहुत अच्छा, गोपनीयता बनी रहेगी, ठीक है। नुकसान क्या है?
स्पेशलाइजेशन नहीं होने के कारण हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
हाँ, हमें तो मालूम ही नहीं मकान कैसे बनता है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, ठीक है, हमें आता नहीं तो हो सकता है हम फालतू पैसा खर्च कर दें, जिसको आता है वो कम खर्चे में चला ले, ठीक है। और अगर हम दूसरे से बनवाएंगे तो फायदा क्या है, कौन बताएगा दूसरे से बनवाने का क्या फायदा? विशिष्टीकरण का लाभ मिलेगा, जो आप बता रही हैं, ठीक है, वो तो बनाना जानता है तो उसका लाभ हमें मिल जाएगा। और नुकसान क्या होगा? लागत हो सकता है ज़्यादा लगे, गोपनीयता नहीं रह जाएगी, उसको हमारे मकान के बारे में सब पता रहेगा। तो वहीं बच्चों ई कॉमर्स के बारे में भी है, अगर आप खुद बनाने चलेंगे तो हो सकता है बना पाएँ, हो सकता है बना ही ना पाएँ, और हो सकता है आपको उस तरह के तकनीकी लोग ही ना मिलें जो दूसरे लोग वेबसाइट बना रहे हैं, या मान लीजिए मकान बना रहे हैं तो उन्हें मालूम है बिजली का मिस्त्री कौन है, प्लम्बर कौन है, और पीओपी कौन बढ़िया करता है, वो ले आया पीओपी वाले को लगाया, 3 दिन में पीओपी निपटा, ख़त्म किया। आप लेबर चढ़ाए खड़े हैं, भाई पीओपी वाला नहीं मिल रहा, पीओपी वाला मिल रहा है तो पता नहीं क्या भाव बता रहा है, यहाँ तो वो जो ठेकेदार है या आर्किटेक्ट है उसको पता है कि पीओपी वाले का क्या भाव होता है, आपको भी अड़ोसी से पड़ोसी से पता चल गया, आपने कहा नहीं पीओपी इतने भाव नहीं होता, जो भी है। तो उस वो दोनों चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी। तो यही वेबसाइट पे भी है, बिल्ट ओन वर्सेस आउटसोर्सिंग, होस्ट ओन वर्सेस आउटसोर्सिंग। जो मेंटेनेंस है, होस्ट का मतलब क्या हुआ कि कहाँ ये वेबसाइट रहेगी, बना तो दिया लेकिन अब इसको होस्ट करना पड़ेगा, किसी बड़े कंप्यूटर पर ही लगातार रहेगी, और अगर अपने कंप्यूटर पर रखेंगे तो बड़ी दिक्कतें हैं। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत साल पहले, 20-30 साल पहले अपनी वेबसाइट बनाई, और हम भी उसमें काफ़ी उनको सलाह दे रहे थे कि कैसे बनती है, क्या किया जाता है। तो ये हुआ कि नहीं साहब, हम अपना 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 आईपी एड्रेस लेंगे और अपने आप होस्ट करेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपना कंप्यूटर होगा, उस पर वेबसाइट होगी। अब जज साहब लोगों को हम बहुत समझाने की कोशिश किए कि भाई ये चलता नहीं है, लेकिन वो कहाँ मानने वाले, बोले नहीं नहीं हाईकोर्ट की वेबसाइट हाईकोर्ट के अपने कंप्यूटर पर रहेगी, किसी दूसरे कंप्यूटर पर हम क्यों देंगे। तो वो समझ नहीं पाए या हम समझा नहीं पाए
तो अब हाई कोर्ट की वेबसाइट चले ही ना, बंद तो गई, चली नहीं। क्यों नहीं चली? क्योंकि अब एक दूसरा पहलू आपसे बता रहे हैं, जब आप किसी वेबसाइट पर, किसी कंप्यूटर पर वेबसाइट रखते हैं, तो उस कंप्यूटर पर हजारों लोग एक साथ जा सकते कि नहीं जा सकते? आप बुक माई शो पर जा रहे हैं, IRCTC पे जा रहे हैं, या गूगल पे जा रहे हैं, तो लाखों लोग एक साथ लगे हुए, तो सबको वो डेटा दे रही है, यानी उससे जुड़े हुए इतने तार होने चाहिए कि वो सबको डेटा दे पाए, उतना रास्ता होना चाहिए डेटा जाने का। अब अगर आपने अपने कंप्यूटर को बना दिया सर्वर जहाँ पर वेबसाइट रखेंगे, तो उतना तार ही नहीं है कि डेटा जा पाए। जो प्रोफेशनल वेबसाइट होस्ट करते हैं, वो तो जैसे ही देखते हैं, कंप्यूटराइज है वो, सब ऑटोमेटिक है, जैसे ही देखते हैं कि अच्छा और ज़्यादा विजिटर्स आ गए, तो तुरंत लाइनें बढ़ जाती हैं, ऑटोमेटिकली लाइन जुड़ जाती हैं, और लाइन जुड़ गई, और लाइन जुड़ गई, और लाइन जुड़ गई, और लाइन जुड़ गई, ठीक है, तो जुड़ता चला जाता है चाहे जितना हो। फिर भी आपने कभी कभी देखा होगा कि जब रिजल्ट आता है तो क्या वेबसाइट चलती है? नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि लाखों लोग एक साथ देखने लगते हैं और उतना उसमें कनेक्शन है ही नहीं। तो ये होस्ट की प्रॉब्लम होती है। तो वेबसाइट में हमें ये देखना पड़ता है कि खुद रखें या दूसरों को दें। ओके, अब ये टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन हमने आपको बताया। अच्छा, जाने दीजिए, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जाने दीजिए। अच्छा, अब अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं। चार लिखा है अभी तक, पांचवा लिखिए, साइट प्रबंधन उपकरण। ठीक है, बहुत अच्छा, साइट प्रबंधन उपकरण, ठीक है, जिसमें 5.1 हुआ आधारभूत उपकरण, बेसिक आधारभूत उपकरण। ठीक है, अब ये आधारभूत उपकरण क्या बताते हैं, आप अंदर लिख लीजिएगा, चलिए लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, डैश करके लिख लीजिए, क्या कह रहे हैं, वैलिड, वैलिड को क्या कहेंगे,
वैध,
हाँ ठीक है, चलिए वैध ही लिख लीजिए, या वैध नहीं है ये, रुक, हाँ मान्य, या रुक जाइए अभी बताता हूँ, उसको डैश करके लिखिए कि वर्तमान में उपयोगी, वर्तमान में उपयोगी लिंक की जांच, वर्तमान में उपयोगी लिंक की जांच। बहुत आप हाइपरलिंक करते हैं ना, क्लिक क्लिक करते रहते हैं, कहीं का कहीं जाता रहता है, तो देखना पड़ेगा कि ये इस समय उपयोगी है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, पता लगा चल ही नहीं रहा, आपने बना दिया वो फेल कर गया। ये बेसिक मूलभूत उपकरण है। दूसरा, असंबद्ध, असंबद्ध फाइलों की पहचान, असंबद्ध फाइलों की पहचान, ठीक है। अभी देखिए, अंग्रेजी में तो हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब हुआ अनाथ, ठीक है। अब यहां तो कोई अनाथ जैसा है नहीं, यहां तो वो पेज जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो अनाथ जैसा हो गया, अंग्रेजी में तो अनाथ कह सकते हैं, पर यहां अनाथ नहीं कह सकते, ठीक है। जो कंप्यूटर पर जब आप टाइप करते हैं, तो पैराग्राफ पे पैराग्राफ टाइप करते जा रहे हैं, मान लीजिए वर्ड में टाइप कर रहे हैं, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं विडो एंड ऑर्फन। क्या कहते हैं? विडो एंड ऑर्फन, माने विधवा एवं अनाथ, ठीक है। तो अगर पेज के आखिर में अकेली लाइन रह गई,
तो उसको कहते हैं विडो।
माने पेज जहां खत्म हो वहां एक लाइन नहीं रहनी चाहिए, वहां कम से कम दो लाइन होनी चाहिए। और अगला पेज जब शुरू हो रहा है और वो सिर्फ एक ही पेज से शुरू हो तो उसको कहते हैं अनाथ, ऑर्फन। ठीक है, तो ये विडो और ऑर्फन कंट्रोल हम लोग लगाते हैं जब प्रिंट करने चलते हैं, कोई चिट्ठी लिखी, कोई पेपर लिखा और 5-7 पन्ने का है, तो ऐसा ना हो जाए कि कोई पन्ने में सबसे नीचे एक ही लाइन रह जाए या कोई पन्ने में शुरुआत में केवल एक ही लाइन हो, वो उसको कहते हैं विडो एंड ऑर्फन। ठीक है, तो ये विडो एंड ऑर्फन चेक करते हैं हम लोग, बात समझ रहे हैं ना। तो ये पहला हुआ हमारा जो मूलभूत उपकरण है हमारे टूल को, क्या बताया, उपकरण। तो वो दो चीज़ें देखेंगे, वेरीफाई दैट लिंक्स ऑन पेजेस आर स्टिल वैलिड और आइडेंटिफाई ऑर्फन फाइल्स। ठीक है, फिर 5.2 नहीं, अभी इससे पहले पॉइंट क्या लें, 5.1 अब 5.2 लिखिए। उच्च स्तरीय प्रबंध के लिए उपकरण, ठीक है, इसी में डैश करके फिर आगे लिख लीजिए, ग्राहकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण, ग्राहकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण, ठीक है, और प्रचार प्रसार के प्रभाव का विश्लेषण, प्रचार प्रसार के प्रभाव का विश्लेषण। अब हम क्या देखते हैं कि जो ग्राहक हमारे पास आ रहा है वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, ये ग्राहक कब कब आता है, क्या क्या खरीदता है। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मान लीजिए, तो इस सॉफ्टवेयर को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि मैं यही वाली कमीज पहनता हूँ। आप लोग इतने दिन से मुझे देख रहे हैं, आज 7वां या 8वां लेक्चर है, तो आप लोगों ने मुझको क्या पहने देखा होगा, यही पैंट और यही कमीज, बस यही पहनता हूँ। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि एक ही है, ठीक है, रोज शाम को जाता है, धुल जाता है, सुबह पहन के चले जाते हैं, ऐसा वाला नहीं है, ऐसा ही पैंट बहुत सारा है और ऐसा ही शर्ट बहुत सारा, ठीक है, लेकिन पहनेंगे क्या, यही शर्ट पहनेंगे और कोई शर्ट नहीं पहनेंगे, और यही वाला पैंट पहनेंगे और कोई पैंट नहीं पहनेंगे। अभी आपसे कहें कि वही वाला पैंट रोज पहनी तो कहेंगे पागल है क्या, वो अरे जब दूसरा पैंट लेना तो दूसरा तरह का लेंगे, दूसरा शर्ट लेंगे। लेकिन अब हम लोगों की उम्र हो गई तो हम लोगों को लगता है कि जो सुविधाजनक रहे वही पहनेंगे भाई। तो अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने फ्लिपकार्ट से खरीदा, मिंत्रा से खरीदा, जबोंग से खरीदा, तो हम हमेशा यही वाली कमीज ढूंढ रहे, 42 लेनिन, वो जॉन प्लेयर्स, रेगुलर फिटिंग, लॉन्ग स्लीव्स, अब तो सब हो वाइट कलर, सब तय हो गया ना। तो ग्राहक की प्रवृत्ति का विश्लेषण होना चाहिए कि ग्राहक क्या क्या खरीदता है। तो जबोंग को, मिंत्रा को ये पता लगा लेना चाहिए कि अरे बाप रे बाप, ये तो यही सफ़ेद वाली आ गया है, सफ़ेद वाली कमीज खरीदेगा, तो जल्दी से उसको सफ़ेद वाली कमीज दो कि नहीं, और जब सेल लगे सफ़ेद वाली कमीज पर तो तुरंत हमको खबर करें कि सर देखिए सेल लगी, आइए ले लीजिए। तो बजाय इसके कि हमको कहीं कहीं से मंगानी पड़े, अभी ये जॉन प्लेयर्स में सेल लगी हुई है आजकल, 30% डिस्काउंट ऑन वन शर्ट और 40% डिस्काउंट ऑन टू शर्ट्स, ठीक है, अभी लगी हुई है सेल, दिल्ली में दूसरी सेल लगी हुई है इसी पर, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, हमको पता है कि जनवरी और जुलाई में सेल लगती है। अब जनवरी में पूरा नहीं बिक पाया होगा तो फरवरी, जनवरी में लगा 30-40, अब फरवरी में कर दिया बाय वन गेट वन फ्री, पुराना माल बेच रहे हैं, तो इलाहाबाद भर में जितनी मिली सब खरीद लिए, अब इलाहाबाद खत्म हो गया तो दिल्ली से मंगाना पड़ा। दिल्ली में बेटी हमारी रहती है, उसको हमने फिर फ़ोन करके कहा, फोटो वोटो भेजा कि बेटिया ये वाली शर्ट ज़रा कुछ भेजो। तो क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर ग्राहक की प्रवृत्ति का विश्लेषण नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये एडवांस थर्ड पार्टी उच्च स्तरीय प्रबंधन सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, बात आप समझ रहे हैं। अगर उच्च स्तरीय प्रबंधन सॉफ्टवेयर होंगे तो पता लगा देंगे कि नहीं, जैसे जो हमारे बेटे की दवाई की दुकान है वहाँ का सॉफ्टवेयर तुरंत बताता है कि किसकी दवाई ख़त्म होने वाली है, जो लोग बीपी की दवाई खाते हैं, शुगर की दवाई खाते हैं, थायराइड की दवाई खाते हैं, टीबी की दवाई खाते हैं, वो तो लंबा खाते हैं। बीपी वाले तो सारी ज़िंदगी खाते हैं, शुगर वाले सारी। अरे आपके घर में भी नाना दादा दादी सब होंगे जो रोज दवाई खाते होंगे, तो उनकी दवाई ख़त्म होगी कि नहीं कभी? और उस समय वो कहेंगे किसी, अरे हमारी दवाई ख़त्म हो गई, मंगाओ भैया दवाई ख़त्म हो गई। हो सकता है सुबह सुबह ख़त्म हो गई तो कहेंगे अरे हाँ दवाई नहीं है, दवाई मंगाओ, नहीं तो दवाई क्या खाएं, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हमारे बेटे की दुकान का सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब किसी ने दवाई खरीदी, आप मान लीजिए ये अपने दादाजी के लिए दवाई ले जा रहे हैं, तो दवाई ख़त्म होने के 3 दिन पहले इनको फ़ोन पहुंच जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि सर आपकी दवाई ख़त्म होने वाली है, भिजवाएं क्या? ग्राहक की प्रवृत्ति का विश्लेषण, ठीक है। फिर और क्या कह रहे हैं, जो बाज़ार में आपने प्रचार प्रसार के लिए काम किया उसका क्या प्रभाव हुआ, ठीक है। क्या लिखाया था? हाँ, प्रचार या प्रसार के प्रभाव का विश्लेषण। अब आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, मार खूब होर्डिंग लगा दिया और बैनर लगा दिया और रेडियो पे विज्ञापन दे दिया, अरे बाबा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, फालतू पैसा खर्च हो गया, ठीक है। तो इसको हमें देखना पड़ता है। अब इसके बाद हाँ हाँ पापा की कॉल, बात करो, वैसे फ़ोटो मम्मी की आ रही है। अच्छा फ़ोन पापा का है, फ़ोटो मम्मी की है। वो क्या था, 5 नंबर था, 6 नंबर था, 5 हो गया ना, अब 6 लिखो, 6 नंबर, ठीक है। अभी डायनेमिक को क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? गतिशील, ठीक है। अभी उसको, ठीक है चलो, गतिशील नहीं, परिवर्तनशील, ठीक है। लिखो हमारे हिसाब से लिखो, परिवर्तनशील या, हाँ ठीक है, परिवर्तनशील पेज, परिवर्तनशील पेज या पृष्ठ, परिवर्तनशील पेज या पृष्ठ निर्माण के उपकरण, निर्माण के, अच्छा बेटी आ जाओ कोई बात नहीं बेटा, परिवर्तनशील पृष्ठ निर्माण के उपकरण, परिवर्तनशील पृष्ठ निर्माण के उपकरण, परिवर्तनशील, आराम से लिख लूंगा बेटी, परिवर्तनशील निर्माण के उपकरण, ठीक है। ये हुआ 6 नंबर पॉइंट, ठीक। अब इसमें हमें क्या देखना होता है कि बहुत सारे जो हमारे वेबसाइट के पेजेस हैं वो लगातार बदलेंगे, हर क्षण बदल जाएंगे। जैसे आप रेल का रिजर्वेशन कराएं, रेड बस जानते हैं, रेड बस, redbus.com, कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। अच्छा IRCTC, हाथ उठाइए, ओके चलो। रिजर्वेशन कितने लोगों ने कराया, हाथ उठाइए। अच्छा चलो फिर तो बहुत है, कितना, इतना बहुत है। तो अब जब आप जानना चाहें कि प्रयागराज में आज कितनी सीट है तत्काल में या प्रीमियम तत्काल में, तो जो सीट बताएगा वो परिवर्तनशील होगा कि स्थाई होगा? परिवर्तनशील होगा। तो परिवर्तनशील जो पेज बनेगा वो कैसे बनेगा, उसके उपकरण, उसके टूल्स अलग होंगे, उसके टूल्स सामान्य वाले टूल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो डायनेमिक इसमें 6.1, ये 6 था ना, हाँ 6.1, परिवर्तनशील पेज का निर्माण ठीक है लिखा, 6.1 परिवर्तनशील पेज का निर्माण, डैश डैश लगा के इसी में आगे लिखिए, सामग्री डेटाबेस में होनी चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग की जानी चाहिए। कॉमा यह निर्माण की लागत को कम करता है तथा बाजार के वर्गीकरण में
मदद करता है। बाजार के वर्गीकरण में मदद करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आप ये डायनेमिक पेज जनरेशन करते हैं तो होता यह है कि जो सूचना पेज पर आपको दिखाई जा रही है वो डेटाबेस में स्टोर की जा रही है और डेटाबेस से तुरंत आती है, तो पेज जो इनिशियल पेज बनाना है उसकी लागत कम हो जाती है। डेटाबेस की लागत है, इसकी लागत कम हो गई। बात नंबर एक। बात नंबर दो कि इससे हम ग्राहकों का या बाजार का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे irctc.co.in की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप अगर स्लीपर क्लास के यात्री हैं तो बाकी AC 1, 2, 3 बंद कर दीजिए, उसको चेक कर दीजिए तो वो नहीं दिखाएगा, सिर्फ वो ट्रेन दिखाएगा जहाँ पर स्लीपर चलता है। या आप सिर्फ AC 1 में जाते हैं तो बाकी सब ऑप्शंस ऑफ कर दीजिए तो AC 1 की ट्रेन दिखाएगा। तो अब उन ग्राहकों के लिए आसान हो गया जो सिर्फ AC 1 में जा रहे हैं, या उन ग्राहकों के लिए आसान हो गया जो किसी विशिष्ट श्रेणी में जाना चाहते हैं। तो ग्राहकों का वर्गीकरण हो गया। कोई ग्राहक कहता है हम सिर्फ सुपरफास्ट से जाएंगे, राजधानी से जाएंगे और किसी ट्रेन से जाएंगे ही नहीं, तो वो भी ऑप्शन है, राजधानी क्लिक कर दीजिए, राजधानी राजधानी आ गया। या मेक माई ट्रिप पर आप जा रहे हैं, मान लीजिए हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो सिर्फ इंडिगो से जाना चाहते हैं, अलग अलग तरह की एयरलाइंस होती हैं, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया वगैरह वगैरह, तो आप सिर्फ इंडिगो से जाना चाहते हैं तो आप इंडिगो पर क्लिक कर दीजिए, अब वो इंडिगो ही दिखाएगा। तो ग्राहकों का वर्गीकरण और बाजार का वर्गीकरण आसान हो जाता है। ठीक है, 6.2 कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य। चलिए, सामान्य उपकरण डैश इसकी हिंदी नहीं हो पाई, लिख दीजिए ऐसी CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, आप दो पॉइंट लिख लीजिए बस, कॉमन गेटवे इंटरफेस दैट इज CGI और दूसरा लिख लीजिए ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ODBC यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, दो चीज लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, बता देता हूं क्या होता है। क्या होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि एक जगह कहीं डेटा रखा हुआ है, उस जगह से बहुत सारी जगहों पर डेटा जब चाहें हम भेज सकते हैं। तो वहाँ जाने, वहाँ से डेटा लाने के लिए जो दरवाज़ा है, गेटवे, गेटवे माने दरवाज़ा, वो कॉमन है और वो किसी से भी जोड़ा जा सकता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये हो गया कॉमन गेटवे इंटरफेस, माने डेटाबेस आप चाहे जहाँ से उठा ले जाए। और दूसरी चीज़ क्या हुई, ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, माने हम ऐसा डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर से जुड़ जाता है। तो ये दो चीज़ें हमें सामान्य उपकरणों में ध्यान रखनी पड़ती हैं। 6.2 6.3 लिख लीजिए लाभ, एडवांटेजेस, लाभ। ठीक है, लाभों में डैश करके लिख लीजिए, कम लागत कॉमा ग्राहकों के वर्गीकरण की सुविधा कॉमा फिर से आ गया, कर लो ना बात, अब यार पूरी बात कर लेना बेटा, अरे वो पहली बार कट गया होगा ना। बच्चियों के माता पिता की समस्याएं बहुत फ़र्क होती हैं, लड़कों के माता पिताओं की समस्याएं फ़र्क होती हैं, लड़कियों के माता पिताओं की समस्याएं फ़र्क होती हैं। और मेरे बेटी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मुझे बेटियों के माता पिताओं की समस्याओं का खूब पता है, और बेटों के बेटे हैं
और मैं पाला हूँ उनको बेटियों की तरह, जैसे बेटियों को दिखा जाता है वैसे ही रखता हूँ। आज भी अलग अलग शहरों में रहते हैं लेकिन मेरे पास वैसे ही रहते हैं जैसे बेटियाँ। इस समय कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, जैसे बेटियों के माँ बाप को हमेशा ही रहते इस समय कहाँ है क्या कर रही है, इतना मालूम रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। और भाई भाई हो बड़े तो और मुसीबत। ओके, तो लाभों में हमने लिखा पहला क्या लिखा, कम लागत, दूसरा वर्गीकरण की सुविधा, तीसरा लिखिए कि मूल्य विभेदन, मूल्य विभेदन की सुविधा। आ जा बेटी, मूल्य विभेदन की सुविधा, ठीक है, माने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि सस्ता वाला है कि महंगा वाला है, कि प्राइस कम कर दो कि बढ़ा दो। इतना मज़ेदार हो रहा है, ट्रेन में खूब हो रहा है अब तो, हवाई जहाज में पहले बहुत होता था, कि जैसे जैसे सीट ज़्यादा बुक होती जाती है दाम बढ़ता जाता है, रेल में भी बढ़ रहा है, ठीक है। जो प्रीमियम तत्काल टिकट्स हैं या बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी हैं जिसमें जैसे जैसे टिकट बुक होता जाएगा वैसे वैसे दाम बढ़ता जाएगा। तो इसका फ़ायदा एक है बड़ा मज़ेदार, इसके दो फायदे हैं, नुकसान होंगे कुछ मुझे पता नहीं। अच्छा, नुकसान मैं आपसे समझूंगा, आप बताइए। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे टिकट बुक होती जा रही है तो दाम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसका कोई नुकसान है, क्या क्या नुकसान है, बहुत आलोचना इसकी होती है। हाँ,
जो लोग नेट नहीं जुड़े हैं, हाँ, उनके लिए नुकसान होगा सर।
राजा बेटा, वो खिड़की पे जाके ले लो ना, वहाँ पर भी यही हो रहा है।
नहीं सर, ऑनलाइन में ये सुविधा है कि ऑनलाइन घर पर ही बैठ के हम तुरंत कर लेंगे।
ठीक कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन नहीं कर सकते उनको दिक्कत होगी कि कुछ और?
नहीं सर,
यही ना। तो जो ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं बेटे, वो यही सुविधा खिड़की पे जाकर तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो अब आप कहेंगे साहब समय ज़्यादा लगता है वगैरह वगैरह, अरे बाबा तो जिसके पास सुविधा है उसको तो लेने दोगे कि नहीं लेने दोगे? और जिसके पास नहीं है, मान लीजिए ईश्वर की दया है, नहीं वो उतना सामर्थ्य है उसके पास, तो जाए खिड़की से जाके ले लेना, ठीक है, और क्या दिक्कत है? अरे बताइए ना, खुल के बताइए, बहुत सारी दिक्कतें लोग बताते हैं, अरे साहब लूट रहे हैं महंगा। हाँ नहीं सर, वही प्रॉब्लम, बैठो बैठो, हाँ हाँ बोलो। पैसा ज़्यादा लगता है, लूट रही है सरकार, बेवकूफ़ बना रही है, टिकट नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब दाम नहीं बढ़ रहा था तब क्या हो रहा था, क्या टिकट मिल जा रहा था, क्यों नहीं मिल रहा था, सब ब्लैक हो जा रहा था, लोग खरीद खरीद के रख ले रहे थे, और आप 3 महीना पहले 4 महीना पहले प्लान करके रखते थे, और अगर आपको मजबूरी में कल जाना पड़े परसों जाना पड़े तो टिकट नहीं ही मिलेगा। आज ये है, अब आप दलाल के पीछे भाग रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं, उसे कोटा रिलीज करा रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, उसको घूस दे रहे हैं, और सब बिचौलिए खा गए, ना सरकार को मिला और ना आपको फ़ायदा मिला। ऐसे क्या हुआ, सरकार को मिला और आपको टिकट मिला, हमको आज जाना है दिल्ली मान लीजिए, तो आज शाम का प्रयागराज का टिकट मिल जाएगा, और चाहे 5,000 का मिले, 4,000 का मिले, 5,000 का मिले, लेकिन मिल जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फायदे, डायनेमिक माने वो क्या, डायनेमिक को हमने क्या लिखाया, गतिशील पेजों से हमें हो गया, ठीक, हाँ परिवर्तनशील, ठीक है। अच्छा ओके ओके, अच्छा आज बच्चों इतनी ही बात कर रहे हैं, आज यहीं लोग रोक ले रहे हैं, और फिर हम लोग अगले टर्न पर यानी कल अगली बात करते हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने डायनेमिक पेज जनरेशन टूल्स पर बात रखी है, ठीक है। तो कल हम लोग की क्लास कितने बजे है, 3 से 4, ठीक है। आज हमने क्लास इसलिए ले लिया कि हो सकता है हम शुक्रवार को ना ले पाए, हो सकता है हमें शुक्रवार को छुट्टी जाना पड़े या हम ना आ पाए, मीटिंग में रहें, तो हमने कहा आज बुध को ही क्लास ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए।